नमस्कार। तो आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो है क्रिश्चियन हैना की 2015 में आई द नाइटिंगेल।
एक ऐसी किताब जिसने मतलब दुनिया भर के पाठकों को झकझोर कर रख दिया।
बिल्कुल, ये दूसरे विश्व युद्ध की कहानी तो है पर इसमें वो तोपें और बंदूकें नहीं है जिनकी हम अक्सर कहानियां सुनते हैं।
नहीं, ये कहानी है उन घरों के अंदर की जहां एक अलग ही जंग लड़ी जा रही थी। लेखिका ने इसे महिलाओं का युद्ध कहा है और ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है।
हाँ, क्योंकि जब भी हम युद्ध की बात करते हैं तो दिमाग में तस्वीरें आती हैं सैनिकों की, लड़ाइयों की।
बिल्कुल, पर ये उपन्यास इतिहास के उस पन्ने को खोलता है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। उन अनगिनत औरतों के साहस की कहानी जिनके हिस्से ना कोई मेडल आया ना कोई पहचान।
और इस अनकहे इतिहास को हैना ने दो बहनों के आंखों से दिखाया है। कहानियां में फ्रांस के एक छोटे शांत से गांव कैरिवाओ में ले जाती है
जहां व्यान और इजाबेल रहती हैं, और दोनों बहनें मतलब स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है।
शायद उससे भी ज्यादा बड़ी बहन है व्यान, एक स्कूल टीचर, एक माँ।
हाँ, और वो एक तरह से ठहरा हुआ दरिया है। उसका मानना है कि बस चुप रहो, नजरें झुकाकर चलो और किसी तरह ये वक्त निकल जाएगा।
उसका घर लजार्दा, वही उसकी पूरी दुनिया है।
और दूसरी तरफ है उसकी छोटी बहन इजाबेल,
सिर्फ 18 साल की, लेकिन उसके अंदर एक आग है, एक तूफान है।
वो अन्याय देखकर चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसे लगता है कि चुप रहना भी जुल्म करने वाले का साथ देने जैसा है।
और यहीं पर है ना उपन्यास का वो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है।
हाँ, कि जब बुराई आपके दरवाजे तक आ पहुंचे तो साहस का असली मतलब क्या होता है?
क्या वो जो व्यान मानती है, चुप रहकर अपनों को बचाना,
या फिर वो जो इजाबेल का रास्ता है, जान हथेली पर रखकर अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाना।
तो चलिए कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहाँ ये सब शुरू होता है। नाजी जर्मनी फ्रांस पर कब्जा कर लेता है
और कैरिवाओ की शांत गलियों में जर्मन सैनिकों के बूटों की आवाज गूंजने लगती है।
व्यान का पति आंतवान लड़ने जाता है और उसे बंदी बना लिया जाता है।
और फिर एक दिन
एक जर्मन ऑफिसर कैप्टन बेक को व्यान के घर में रहने के लिए भेज दिया जाता है।
सोचिए जरा उस घुटन को, आपका अपना घर पर अब वो आपका नहीं रहा।
एक दुश्मन आपकी मेज पर आपके साथ खाना खा रहा है और आपको अपनी बेटी के लिए मुस्कुराना पड़ रहा है।
व्यान के लिए यह पहली परीक्षा थी।
उसने संयोग और चुप्पी का रास्ता चुना,
लेकिन इजाबेल के लिए ये चुप्पी कायरता थी। वो इस माहौल में सांस नहीं ले पाती और पेरिस भाग जाती है,
और वहां जाकर वो फ्रांसीसी प्रतिरोध यानी फ्रेंच रेजिस्टेंस का हिस्सा बन जाती है।
शुरू में तो वो छोटे मोटे काम करती है जैसे नाजी विरोधी पर्चे बांटना,
पर उसके अंदर का जो जुनून था वो छिप नहीं सका।
नहीं, जल्द ही उसे एक बहुत बड़े और खतरनाक मिशन के लिए चुन लिया जाता है और उसे कोडने मिलता है द नाइटिंगेल।
और उसका काम
मित्र देशों के उन पायलटों को जिनके विमान मार गिराए गए हैं पिरेनीज पहाड़ों के जानलेवा रास्तों से बचाकर स्पेन पहुंचाना।
और ये दिलचस्प है कि ये कोई मनगढ़ंत रास्ता नहीं था, असल में भी एक रूट था द कॉमेट लाइन के नाम से।
हाँ बिल्कुल, लेखिका ने इतिहास की सच्चाई को कहानी में इतनी खूबसूरती से पिरोया है कि इजाबेल का किरदार और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है।
तो एक तरफ इजाबेल देश के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है।
हाँ,
पर व्यान,
हाँ,
उसकी लड़ाई कब शुरू होती है?
वीएन की लड़ाई शुरू होती है इंसानियत और प्रेम से। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त रेशेल, जो एक यहूदी है,
उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।
हाँ, और उस उथल पुथल में राशेल का छोटा बेटा एरी किसी तरह बचकर वीएन के पास पहुंच जाता है।
अब व्यान उसी दौराहे पर खड़ी है जिससे वो हमेशा भागती आई थी।
बिल्कुल, क्या वो उस बच्चे को पनाह देकर अपनी बेटी की जान खतरे में डाले या उसे नाजियों के हवाले कर दे?
और वो एक ऐसा फैसला लेती है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है।
वो अपनी जान की परवाह किए बिना इमरी को अपने घर में छिपा लेती है
जी।
और ये एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़े प्रतिरोध की शुरुआत बनता है।
उसका घर धीरे धीरे यहूदी बच्चों के लिए एक गुप्त अनाथालय बन जाता है।
और ये सब उसी घर में हो रहा है एक नाजी अफसर की नाक के नीचे।
शाबाश,
उसका प्रतिरोध शांत है पर इजाबेल से कम साहसी नहीं।
क्या खूबसूरती से लेखिका ने हिम्मत के दो अलग अलग चेहरे दिखाया ना।
हाँ, अगर इजाबेल की हिम्मत एक जलती हुई मशाल है तो व्यान की हिम्मत एक अंधेरे कमरे में जलता हुआ दिया है
जो उम्मीद को जिंदा रखता है।
और जैसे जैसे युद्ध बढ़ता है दोनों के लिए खतरा भी आसमान छूने लगता है। वो जो नरम दिल अफसर था कैप्टन बेक
जी,
उसकी जगह एक क्रूर नाजी अफसर वॉन रिक्टर आ जाता है,
शैतान का दूसरा रूप।
और उधर पेरिस में द नाइटिंगेल का नाम इतना मशहूर हो जाता है कि गेस्टापो मतलब नाजियों की खुफिया पुलिस उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देती है।
उपन्यास का ये हिस्सा पढ़ते हुए सच में सांसें रुक जाती हैं। अब दोनों बहनों के लिए एक साथ डरते हैं।
हाँ, एक तरफ इजाबेल पहाड़ों पर मौत से आंख मिचौली खेल रही है
और दूसरी तरफ वियान अपने ही घर में एक भेड़िए के साथ रहकर बच्चों को बचा रही है।
और फिर कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। इजाबेल को धोखे से पकड़ लिया जाता है। उसे अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं, पर वो एक शब्द नहीं बोलती और आखिर में उसे रेवेन्सब्रुक कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता है,
जो औरतों के लिए बनाया गया एक नर्क था।
और उसी दौरान कैरेवाऊ में वॉन रिक्टर को वियान पर शक हो जाता है और एक रात वो वियान के साथ बलात्कार करता है,
जिससे वो गर्भवती हो जाती है। ये दिखाता है कि युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं, महिलाओं के शरीर और उनकी आत्मा पर भी लड़ा जाता है।
आखिरकार युद्ध खत्म होता है, फ्रांस आजाद होता है, आंतवान लौटता है, पर वो अब पहले जैसा नहीं रहा।
और फिर एक दिन किसी चमत्कार की तरह इजाबेल भी लौट आती है।
हाँ, पर बस हड्डियों का ढांचा बनकर मौत के दरवाजे पर खड़ी।
दोनों बहनों का वो पुनर्मिलन शायद उपन्यास का सबसे मार्मिक हिस्सा है।
बिल्कुल, सालों की गलत फहमी के बाद आखिरकार वो एक दूसरे के साहस को पहचानती हैं। वियान समझती है कि इजाबेल की बगावत क्यों जरूरी थी,
और इजाबेल को एहसास होता है कि वियान की खामोशी में कितनी बड़ी हिम्मत छिपी थी।
और कुछ ही दिनों बाद इजाबेल अपनी बहन की गोद में हमेशा के लिए सो जाती है।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
नहीं, उपन्यास का अंत होता है 1995 में। एक बूढ़ी औरत पेरिस में है और अब हमें पता चलता है कि ये वियान है
जो दशकों बाद अपनी कहानी सुना रही है। उसे द नाइटिंगेल के सम्मान में हो रहे एक समारोह में बुलाया गया है
और तब वो दुनिया को बताती है कि असली नाइटिंगेल कौन थी और एक और राज खोलती है
कि उसका बेटा जूलियन, जिसे उसने पाला है,
वो असल में वॉन रिक्टर का बेटा है।
ये उपन्यास का सबसे शक्तिशाली संदेश है
कि नफरत से पैदा हुई चीज को भी प्यार से पाला जा सकता है।
तो ये उपन्यास हमें सिखाता है कि बहादुरी सिर्फ बंदूक उठाने में नहीं है।
नहीं, बहादुरी उस भूखे बच्चे को अपनी रोटी का टुकड़ा देने में भी है, किसी बेसहारा को पनाह देने में भी है,
और सबसे मुश्किल हालात में भी इंसानियत को जिंदा रखने में है।
बिल्कुल, उपन्यास के आखिर में वियान एक बहुत गहरी बात कहती है। पुरुष कहानियां सुनाते हैं, महिलाएं बस काम करती जाती हैं।
ये एक लाइन
इस पूरे उपन्यास का सार है।
हाँ, उन लाखों औरतों के अनकहे बलिदान को एक श्रद्धांजलि।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल बड़ी बड़ी लड़ाइयों और संधियों से नहीं बनता, बल्कि अंधेरे में लिए गए उन छोटे छोटे मानवीय फैसलों से भी बनता है जिन्हें कोई नहीं देखता।
और ये कि सच्चा साहस शायद युद्ध लड़ने में उतना नहीं है जितना युद्ध के बीच मानवता और प्रेम को बचाए रखने में है।
ये संवाद यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।